आकाशवाणी दिल्ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जल भराव के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। श्री सक्सेना ने कहा, नालों की खराब स्थिति वर्षों की अपेक्षा और लापरवाही का परिणाम है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा एक ही चरण में, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन की 5 प्रमुख स्टेशनों के सेमी नेमिंग और को ब्रांडिंग अधिकारों के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया। रेलवे ट्रैक के किनारे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नई दिल्ली से विशेष ट्रेन मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स की शुरूआत की गई। सरकार किसानों की पहुंच विज्ञान तक बनाने के लिए अगले महीने से रेडियो पर कार्यक्रम किसानों की बात आरंभ करेगी और दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला सीजन कल से शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में होने वाले जल भराव के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। श्री सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि दिल्ली के नालों की खराब स्थिति स्पष्ट रूप से वर्षों की उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बारापुला, कुशक और सुनहरी नाले पूरी दिल्ली के 24% इलाके से पानी निकालते हैं। हालांकि गाद और गंदगी के कारण ये नाले अपनी क्षमता का 10% काम भी नहीं कर पा रहे। श्री सक्सेना ने बताया कि उनके निर्देशन में इन नालों के सफाई का काम जारी है और पिछले 10 दिनों में इनसे 1200 मीट्रिक टन से ज्यादा गाद निकाली गई है। श्री सक्सेना ने दिल्लीवासियों को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ही नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने देश के 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में और हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान अगले महीने की 18 तारीख को, दूसरे चरण का 25 तारीख को और तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 87 लाख से अधिक मतदाता 90 सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए 11,800 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बुलेट के बजाय मतपत्र को चुना। उन्होंने कहा कि लोग अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर सकते हैं। वहां 20,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है।
आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है।
कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है।
मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमने जीता है।
वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने कहा कि पार्टी नेता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत ट्रेन के 5 प्रमुख स्टेशनों के सेमी नेमिंग और को ब्रांडिंग अधिकारों के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है। इसके लिए NCRTC ने निविदा निकाली है। NCRTC ने के अनुसार इन अधिकारों को प्राप्त करने वाले ब्रांड्स को स्टेशन के नाम के पहले या बाद में अपने नाम को जोड़ने, स्टेशन की दीवारों, होर्डिंग्स, प्रवेश और निकास द्वारों पर अपने ब्रांड के रंगों को शामिल करने और निर्मित एवं खाली जगहों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इसमें भाग लेकर ब्रांड्स अपने नाम को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS स्टेशनों के साथ जोड़कर अपने ब्रांड की पहचान को बढ़ा सकते हैं। इच्छुक कंपनियां अधिक जानकारी के लिए NCRTC की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। राजधानी में रेलवे ट्रैक के किनारे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नई दिल्ली से एक विशेष ट्रेन मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स शुरू की गई है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये ट्रेन प्रत्येक फेरे में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन की आवाजाही के दौरान 50 से 60 मीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में मच्छरों को मारने के लिए लार्वा रोधी स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा। इससे रेल पटरियों के किनारे गड्ढों और एकत्रित पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने में सहायता मिलेगी। ये विशेष रेलगाड़ी आदर्श नगर और बादली के रास्ते राठधना से गुजरते हुए नई दिल्ली लौटेगी और अगले महीने की 21 तारीख तक अन्य क्षेत्रों को कवर करेगी। सरकार किसानों की पहुंच विज्ञान तक बनाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात आरंभ करेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर होगा। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम अगले महीने शुरू होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके साथ कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉ शैली ओब्रॉय और शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निगम के 47 स्कूल प्रधानाचार्यों से संवाद किया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के दिल्ली कार्यालय में किया गया था। इस अवसर पर सुश्री आतिशी ने कहा कि निगम स्कूलों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण के लिए IIM भेजने का उद्देश्य उनकी योग्यता को और बढ़ाना है। वहीं डॉ ओब्रॉय ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अब हम दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से निकलने वाले बच्चे प्रशासन, मेडिकल, नीति निर्माण संबंधी सभी क्षेत्रों में नाम रोशन करें। हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में दिल्ली सरकार खेड़ा गांव नरेला में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण करवा रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्री आतिशी ने PWD और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आज स्कूलों का निरीक्षण किया। इस 4 मंजिला विश्व स्तरीय विद्यालय में 72 कमरे हैं। ये विद्यालय स्मार्ट क्लासरूम, 11 शानदार लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, 250 बच्चों की क्षमता वाले हॉल आदि से लैस है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री आतिशी ने कहा कि विद्यालय में बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और 2 महीने के भीतर इसे बच्चों को समर्पित किया जाए। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान एम्स, सफदरगंज अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सहित रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन RDA के प्रतिनिधियों द्वारा मार्च निकाला गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच शाम के समय RDA ने कैंडल मार्च निकाला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.ir और .gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग दिल्ली प्रीमियर लीग DPL का पहला सीजन कल से शुरू होगा। इसमें पुरुष वर्ग में 6 टीमें और महिला वर्ग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले संस्करण में 40 मैच होंगे जिनमें 33 मैच पुरुष और 7 मैच महिला टीमों के बीच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 8 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात 8:30 बजे पुरानी दिल्ली 6 और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला जाएगा। पुरानी दिल्ली 6 की टीम में ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा भी शामिल हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आईना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। एक रिपोर्ट।
मलयालम फिल्म अत्तम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है, जबकि आईना को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। वहीं फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जातिया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा फीचर फिल्म में हिंदी फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं नॉन फीचर फिल्म में हरियाणवी फिल्म फौजा को सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। इसके अलावा पोनियन सेल्वम पार्ट 1, KGF 2, ब्रह्मास्त्र, अपराजितो, कावेरी अंतर्धन, दमन और बागीदी धी जैसी फिल्मों को भी पुरस्कार मिला है। प्रादेशिक समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीपेंद्र कुमार।
अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण आज से आम जनता के लिए खुल गया है। इस बार आगंतुकों को मौसमी फूलों और पौधों का आकर्षण देखने को मिलेगा, जिनमें बोनसाई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल हैं। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पर्यटक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान में भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि उद्यान में प्रवेश केवल शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। उद्यान के लिए प्रवेश निःशुल्क है। उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं और यहां आने जाने वाले लोगों की सहायता के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। उद्यान 15 सितंबर तक खुला रहेगा। बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैज दिए जाएंगे। प्रांगण में एक नई आकर्षक साउंड पाइप प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे बच्चों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा। यहां आने वाले आगंतुकों को अद्वितीय और पर्यावरण अनुकूल बीज पत्र स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे। आकाशवाणी के प्रति घंटा समाचार बुलेटिन के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। 17-18 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से बुलेटिन के समय में ये परिवर्तन लागू होगा। पहले हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे, उसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री राय ने बताया कि इस वर्ष का विंटर एक्शन प्लान वाहन और धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, पराली तथा कूड़ा जलाने जैसे 14 बिंदुओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी संबंधित 33 विभागों के साथ बैठकर निर्धारित मुख्य बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करना है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जल भराव के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। श्री सक्सेना ने कहा, नालों की खराब स्थिति वर्षों की उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा एक ही चरण में, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के 5 प्रमुख स्टेशनों के सेमी नेमिंग और को ब्रांडिंग अधिकारों के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया। रेलवे ट्रैक के किनारे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नई दिल्ली से विशेष ट्रेन मॉस्क्यूटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स की शुरूआत की गई। सरकार किसानों की पहुंच विज्ञान तक बनाने के लिए अगले महीने से रेडियो पर कार्यक्रम किसानों की बात आरंभ करेगी। और दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला सीजन कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।